पृष्ठ संख्या 118 अध्याय 6 बिंदु क के रूप में अध्याय का शीर्षक है ईश्वर संबंधी धारणाएं आइडियाज रिलेटिंग गॉड। इसके अंतर्गत शीर्षक है विषय प्रवेश। धर्म का इतिहास ही बताता है कि ईश्वर की धारणा धर्म का एक आवश्यक अंग है। धर्म का मूल आधार ईश्वर ही है। धर्म के क्षेत्र में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि धर्म के स्वरूप को देखा जाए तो यह सिद्ध हो जाता है कि मानव की ईश्वर के प्रति की गई प्रतिक्रिया ही धर्म है। धर्म के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बिना इन तीनों पक्षों के समन्वय के धर्म संभव ही नहीं हो सकता। मनुष्य धर्म में ईश्वर या सत्ता का ज्ञान रखता है। ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं यथा श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, आत्मनिवेदन को प्रदर्शित करता है तथा क्रियात्मक पक्ष के आधार पर मनुष्य ईश्वर के प्रति धार्मिक व्यवहार यथा पूजा, अर्चना, प्रार्थना, कर्मकांड आदि क्रियाएं भी प्रकट करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मानव के अंदर निहित इन तीनों वृत्तियों के आधार पर ही धर्म में एक ईश्वर की मांग होती है। बिना ईश्वर के मनुष्य किसके लिए धर्माचरण कर सकता है और फिर किसके प्रति अपने विश्वास और भावनाओं को प्रकट कर सकता है। धर्म दार्शनिकों ने धर्म की जितनी परिभाषाएं दी है उनमें अधिकांश रूप से ईश्वर या सत्ता का उल्लेख किया गया है। इनमें भी सिद्ध होता है कि धर्म में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर फ्लिंट ने इसीलिए धर्म को ईश्वरवाद का पर्याय माना है। ईश्वर के अभाव में धर्म संभव नहीं हो सकता। यहाँ यह विवाद उठ सकता है कि बहुत से अनिश्वरवादी धर्म हैं जो ईश्वर को न मानते हुए भी धर्म की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि। अनिश्वरवादी धर्म यद्यपि ईश्वर में विश्वास नहीं करते परंतु उनका किसी शक्ति या मानवीय मूल्यों में तो अवश्य ही विश्वास रहता है। मानवीय मूल्य ईश्वरी गुणों के ही पर्याय कहे जा सकते हैं। ईश्वर इन मूल्यों का भंडार है। फिर अनिश्वरवादी भी किसी न किसी रूप में ईश्वर में आस्था रखते ही हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य इस विषय पर विचार करना नहीं है। हम यहाँ यही देखना चाहते हैं कि धर्म में ईश्वर संबंधी धारणाएं किन किन रूपों में विकसित हुई हैं। हमने यह देख लिया है कि आदिम धर्म से लेकर विश्व धर्म तक ईश्वर की धारणा अनेक रूपों में मिलती है। प्रारंभ में अनेक ईश्वर की धारणा देखी जाती है, फिर द्वैतवाद और अंत में एकेश्वरवादी मत भी मिलते हैं। हम यहाँ इन मतों की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अगला शीर्षक है पहला अनेकेश्वरवाद। अनेकेश्वरवाद को अंग्रेजी में पॉलीथिज्म कहते हैं। पॉली का अर्थ बहुत या अनेक होता है। और थिज्म का अर्थ है ईश्वरवाद, अतः पॉलीथिज्म का अर्थ हुआ अनेकेश्वरवाद। पृष्ठ संख्या 119। इसके अनुसार अनेक ईश्वरों या देवताओं में विश्वास किया जाता है। दार्शनिक दृष्टि से यूनानी परमाणुवाद, व्यवहारिक बहुतत्ववाद, नव्य वस्तु स्वातंत्र्यवाद तथा आध्यात्मिक बहुतत्ववाद का भी उल्लेख मिलता है। आध्यात्मिक बहुतत्ववाद में लाइबनित्ज का चिदड़ुवाद है। अंतिम तत्व आध्यात्मिक परमाणुओं की अनंत इकाइयां हैं। लाइबनित्ज इनको चिदड़ु कहते हैं। चिदड़ु अनादि, अनंत और नित्य है। परम चिदड़ु अन्य चिदड़ुओं का सृष्टा है। प्रत्येक जीवधारी अनेक चिदड़ुओं का समूह है। प्रत्येक चिदड़ु निरपेक्ष है, परंतु अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर निर्भर है। धर्म में अनेक ईश्वर संबंधी धारणा का प्रारंभ जातीय धर्म से ही हुआ है। आदिम धर्म में बहुजीववाद की धारणा मिलती है। शक्तिशाली जीवों के प्रति मानव में रहस्यमयता तथा आश्चर्य की भावना पाई जाती थी। वही भावना आगे चलकर अनेकेश्वरवाद में विकसित हुई। मनुष्य ने प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या अनेक देवताओं के आधार पर की। सूर्य, चंद्र, मरुत, सरस्वती, ज्यूस, नेपच्यून और वेनस आदि देवी देवताओं की कल्पना की गई। इन देवताओं की प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं का अधिष्ठाता माना जाता था और प्रकृति की विभिन्न घटनाएं इन्हीं के कारण ही घटित होती थी। इसी धारणा के आधार पर वर्षा के लिए इंद्र की पूजा और समुद्र यात्रा के लिए नेपच्यून की पूजा होती थी। अनेकेश्वरवाद का विकास देवताओं के मानवीकरण, नैतिकीकरण और ईश्वरीकरण के आधार पर ही देखा जाता है। अनेकेश्वरवाद का उदाहरण प्रत्येक देश में ही किसी न किसी रूप में मिलता है। भारत के अतिरिक्त यूनान, मिस्र और बेबीलोनिया आदि देशों में अनेकेश्वरवाद मिलता है। यूनान में अपोलो, आर्टेमिस और ज्यूस आदि अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है। भारत में वैदिक काल में अनेकेश्वरवाद का उदाहरण मिलता है। अग्नि, उषा, सूर्य, मरुत, पृथ्वी, वायु, इंद्र और वरुण आदि अनेक वैदिक देवता माने जाते हैं। वैदिक युग में इन अनेक देवताओं में कभी कभी एक ही देवता श्रेष्ठ माना जाता था और उसी की पूजा प्रधान रूप से होती थी। मैक्स मूलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म का नाम दिया है। संभवतः अनेकेश्वरवाद के बाद की इसी प्रवृत्ति ने एकेश्वरवाद को जन्म दिया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वैदिक ऋषि अनेक देवताओं को एक ही सत्ता के प्रकाश मानते थे तथा एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से अभिहित करते थे। मंत्र भी मिलता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसलिए वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद ही मिलता है, अनेकेश्वरवाद नहीं। परंतु इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि धर्म के प्रारंभिक इतिहास में वैदिक युग में अनेकेश्वरवाद प्रचलित था। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में अनेकेश्वरवाद में एकेश्वरवाद परिणत हो गया। अगला शीर्षक है अनेकेश्वरवाद के उद्भव के कारण। इसमें पहला शीर्षक है प्रकृति की घटनाओं की रहस्यमयता। प्रकृति की घटनाओं की रहस्यपूर्णता से मानव अस्तंभित और चकित होकर उन्हें देवी तथा देवताओं द्वारा संचालित मानता था। सूर्य और चंद्रमा के असीम प्रकाश पुंज को देखकर, ऋतुओं को आते जाते देखकर, समुद्र की अतल गहराई और व्योम की असीम व्यापकता को देखकर मानव आश्चर्य से अभिभूत हो उठा और प्रकृति के समक्ष नतमस्तक होकर विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के अधिष्ठाता के रूप में अनेक देवताओं को मानने लगा। इसलिए अनेकेश्वरवाद की उत्पत्ति हुई। दूसरा है अनेकता के प्रति आकर्षण। मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव अनेकात्मक जगत को ही प्रस्तुत करता है, इसीलिए मनुष्य में अनेकता के प्रति आकर्षण प्रारंभ से ही बना रहता है। यही कारण है कि वह एकता के स्थान पर अनेकता को अधिक महत्व देता है। इसके पक्ष में उदाहरण दिया जाता है कि अनेकता के मोह के कारण ही मानव असंख्य तारों की पूजा करता है। मानव ने इसी आकर्षण से संख्या का निर्माण करके उसे पवित्र माना है। अतः अनेकेश्वरवाद अनेकता के प्रति आकर्षण का ही प्रतिफल है। पृष्ठ संख्या 120। बिंदु तीसरा है शीर्षक के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य। मानव बुद्धि के विकास के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के अभिबोध की क्षमता बढ़ी। इसी सौंदर्य की व्याख्या के लिए प्रकृति के विभिन्न सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं में ईश्वर का आरोप किया जाने लगा। इसीलिए विभिन्न देवताओं को माना जाने लगा और अनेकेश्वरवाद का सूत्रपात हुआ। बिंदु चौथा है मानवीय गुणों के प्रतीकीकरण के रूप में। मनुष्य में न्याय, क्षमा, नम्रता, ऐश्वर्य आदि गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के प्रतीक के रूप में अनेक देवताओं की भी कल्पना की जाती है। इसलिए भी अनेकेश्वरवाद को जन्म मिला। जैसे इंद्र में शौर्य का गुण है, इसलिए वे शौर्य के देवता हैं। वरुण न्याय के, एथीने ज्ञान के और हेस्टिया पवित्रता के। अगला शीर्षक है अनेकेश्वरवाद के देवी देवताओं की विशेषताएं। इसमें पहला बिंदु है पारलौकिक। अनेकेश्वरवाद में देवताओं को पारलौकिक समझा जाता है। उनका निवास स्थान यह लौकिक विश्व नहीं, वरन स्वर्गलोक, पाताल लोक, यमलोक, इंद्रपुरी आदि माना जाता है। इस संसार में यदि कभी आते भी हैं तो हवा, बादल, सागर या पहाड़ की चोटी में अस्थाई रूप से रहते हैं। अस्थाई निवास तो इस संसार से परे के लोक में ही रहता है। बिंदु दूसरा है अमरत्व। अनेकेश्वरवाद के देवताओं की दूसरी विशेषता यह है कि वे अमर तथा लौकिक मानवों से भिन्न पूर्ण और नित्य होते हैं। उनमें दुख का अभाव और आनंद की अधिकता होती है। कर्म वसात कभी कभी उन्हें दुख का सामना भी करना पड़ता है। पुण्य क्षय के पश्चात उनके आनंद का भी अंत हो जाता है। बिंदु तीसरा है, भक्तों की रक्षा। अनकेश्वरवादी देवता में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है। मानव जिस प्रकार दया क्षमा और न्याय करता है, उसके अंदर विचार भाव और संकल्प की वृत्ति होती है। उसी प्रकार अनकेश्वरवादी देवता व्यक्ति पूर्ण होने के कारण भक्तों के कष्टों को सुनते हैं, कष्ट दूर करने के उपाय करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। बिंदु चौथा है, मानव केंद्रित धर्म। अनकेश्वरवादी धर्म में ईश्वर या देवता व्यक्ति पूर्ण होता है, उसका मानवीकरण होता है, क्योंकि व्यक्तित्व बिना मानवीकरण के संभव नहीं। इसलिए अनकेश्वरवादी ईश्वर मानव केंद्रित है। अगला शीर्षक है, अनकेश्वरवाद के विरुद्ध आक्षेप। इसमें पहला बिंदु है, अनकेश्वरवादी ईश्वर में पूर्णता का अभाव। अनकेश्वरवाद अनेक ईश्वरों को मानता है, जिससे एक ईश्वर दूसरे को सीमित कर देता है। इसका ईश्वर पूर्ण और असीम नहीं रह जाता, क्योंकि पूर्णता तो एकता में ही संभव है। अनेकता में पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती। जब ईश्वर असीम और अपूर्ण है, तो वह धर्म की दृष्टि से भक्त की भावना को संतोष नहीं प्रदान कर सकता। जब देवता स्वयं संकटग्रस्त हो सकता है, तो मनुष्य की रक्षा वह किस प्रकार कर सकता है? मानवीय गुण और अवगुण उसमें भी व्याप्त हैं। इसलिए जिस प्रकार मानव ससीम और अपूर्ण है, उसी प्रकार अनकेश्वरवादी ईश्वर भी है। अतः यह मत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। पृष्ठ संख्या 121। बिंदु दूसरा है, अनकेश्वरवाद विश्व की व्याख्या नहीं कर सकता। अनकेश्वरवाद के अनुसार अनेक ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जाती है, परंतु अनेक ईश्वर को मानने से विश्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। विश्व की व्याख्या एक मूल सत्ता के आधार पर ही संभव है। विश्व इकाई है। इस एकता को अनेकता के आधार पर जानना संभव नहीं है। धर्म का उद्देश्य अपूर्णता और अनेकता को उत्पन्न करना नहीं है, वरन इनका अंत करना ही धर्म का मूल उद्देश्य है। परंतु अनकेश्वरवाद अपूर्णता और अनेकता पर ही बल देता है, इसलिए यह मत संतोषजनक नहीं है। बिंदु तीसरा है, एटकिंसन ली द्वारा आलोचना। ली ने अनकेश्वरवाद की आलोचना करते हुए बताया है कि इस सिद्धांत में अनेक देवी देवताओं की कल्पना के कारण परस्पर संघर्ष और द्वंद्व की संभावना हो जाती है। फलस्वरूप मानव व्यवहार और मानव आशाओं के प्रति अव्यवस्था की कल्पना संभव है। बिंदु चौथा है, अंधविश्वास और जादू का प्रभाव। अनकेश्वरवादी धारणा में भाग्य को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसके फलस्वरूप अंधविश्वास का प्रचलन स्वाभाविक है। साथ ही इस धर्म में जादू और धर्म इतने मिले जुले रहते हैं कि धर्म को अलग करना कठिन होता है। अतः अनकेश्वरवाद दोषपूर्ण है। बिंदु पांचवा है, बुद्धिवादियों और वैज्ञानिकों के प्रतिकूल। आज के इस बुद्धिवादी और वैज्ञानिक युग में अनकेश्वरवाद उपहासास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि अनकेश्वरवाद के अनुसार स्वर्ग या इंद्रपुरी में रहने वाले देव देवी मानव जीवन को संचालित करते हैं। ऐसी धारणा बुद्धि में प्रविष्ट ही नहीं कर सकती और न तो यह विज्ञान सम्मत ही है। अतः अनकेश्वरवाद धर्म की व्याख्या करने में अक्षम है और इसीलिए यह उपयुक्त नहीं है। अगला शीर्षक है, दूसरा है द्वैतवाद। द्वैतवाद के अनुसार मूल तत्व न एक है और न अनेक बल्कि दो है। द्वैतवादी मत तत्व शास्त्र और धर्म दोनों में देखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की मूल सत्ता एक ही प्रकार की नहीं वरन दो विरोधी प्रकृति की है। अतः जिस मत में दो मूल तत्वों को माना जाता है वही द्वैतवाद कहलाता है। तत्वशास्त्र में द्वैतवाद के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यूनानी दर्शन में द्वैतवाद का दार्शनिक रूप प्लेटो के दर्शन में मिलता है। उनके अनुसार मूल तत्व दो हैं, शिवम का प्रत्यय और पुद्गल या मैटर। शिवम एक विश्वव्यापी प्रत्यय है, प्लेटो ने इसे ईश्वर भी बताया है। पुद्गल या मैटर शिवम के ठीक विपरीत है, शिव चेतन है और पुद्गल अचेतन। शिवम शुभ और पुद्गल अशुभ। शिवम नित्य तथा पूर्ण है और पुद्गल अपूर्ण। इन दोनों में संघर्ष है, एक विश्व में शुभ चाहता है दूसरा अशुभ। यूनानी दर्शन में द्वैतवाद का दूसरा उदाहरण अरस्तु के दर्शन में मिलता है। उनके अनुसार मूल तत्व आकार और मैटर या भूत है। इन दोनों का स्वरूप एक दूसरे के विपरीत है। आकार सामान्य और सार्वभौम है और मैटर या भूत विशिष्ट है। आधुनिक दर्शन में डेकार्त द्वैतवादी हैं। इनके अनुसार मूल तत्व पुद्गल और मनस है। ये दोनों भी विपरीत गुणों वाले हैं। पुद्गल का गुण विस्तार है और मनस का गुण विचार है। पुद्गल विभाज्य है और मनस अविभाज्य। इसी प्रकार कांट ने ज्ञेय और अज्ञेय तथा ब्रेडले ने सत्य तथा आभास को मानकर द्वैत को प्रकट किया है। पृष्ठ संख्या 122। भारतीय दर्शन में सांख्य द्वैतवाद का समर्थन करता है। इसके अनुसार पुरुष और प्रकृति दो मूल तत्व हैं, दोनों ही स्वभाव और कार्य में एक दूसरे के विपरीत हैं। पुरुष चेतन और प्रकृति अचेतन है, पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय। मनुष्य के अनुभव से भी द्वैतवाद की स्थापना होती है। हमें जड़ और चेतन, मन और शरीर दो विरोधी तत्वों के अनुभव से ज्ञान होता है। स्मृति और स्वप्न भी मानसिक और भौतिक तत्वों को सिद्ध करते हैं। मनस के कारण ही स्मृति तथा स्वप्न संभव है। मनस के अतिरिक्त भौतिक तत्व जगत के रूप में दिखाई देता है। इन दो तत्वों के कारण ही हम भौतिक वस्तुओं में मानसिक गुणों को नहीं पाते और मानसिक गुणों में भौतिक गुणों को नहीं देखते। पैट्रिक के शब्दों में हम यह नहीं कहते कि इतने वर्ग गज प्रेम या इतने इंच विचार अथवा इतने शेर आशा, और न तो यही कहते हैं कि तारे प्रेम करते हैं, परमाणु आशा करते हैं। धर्म दर्शन में भी द्वैतवाद का सिद्धांत प्रचलित है। धर्म में ईश्वर संबंधी धारणा की उत्पत्ति का आधार संभवतः विश्व में शुभ एवं अशुभ की धारणा को कहा जा सकता है। जब ईश्वर भक्त संसार के कष्टों और विपत्तियों से घिर जाता है तो इन अशुभ कार्यों के लिए भक्त की प्रगाढ़ता के कारण वह ईश्वर को दोषी नहीं ठहराता। ईश्वर के स्थान पर ईश्वर विरोधी शक्तियों को ही अशुभ का कारण मानने लगता है। इसलिए धर्म में ईश्वर और उसकी विरोधी शक्ति, इन दोनों तत्वों को मान्यता मिल जाती है। धर्म के इतिहास में द्वैतवादी मत बहुत प्राचीन ज्ञात होता है और लगभग सभी धर्मों में इसका उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल से ही देवताओं और राक्षसों के संघर्ष की चर्चा मिलती है। भारत में कृष्ण और कंस का संघर्ष, राम और रावण का द्वंद्व, चीन में यंग और ईना का संघर्ष तथा ईसाई धर्म में ईश्वर और शैतान की लड़ाई का उल्लेख मिलता है। इन्हें दो विरोधी गुणों वाली सत्ता मानते हैं। यह लड़ाई शुभ एवं अशुभ की ही है। द्वैतवाद का सबसे उग्र रूप पारसियों के जोरोस्ट्रियन धर्म में मिलता है। इस धर्म में मूल दो तत्व अहुराम जदा और अहरिमान है। इनमें सदैव संघर्ष होता रहता है। अहुराम जदा शुभ है तथा अहरिमान अशुभ। इस धर्म के संचालक ज़ोरास्टर का विश्वास है कि इन दोनों संताओं के संघर्ष में अहुराम जदा की अंत में विजय होगी और अहरिमान की हार होगी। इसीलिए पारसी उस अंतिम स्थिति को ध्यान में रखकर अपने धर्म को कभी कभी एकेश्वरवाद के रूप में ही मानते हैं। जो भी हो, व्यवहारिक रूप में पारसी धर्म द्वैतवादी ही है। ईसाई धर्म में भी ईश्वर के साथ शैतान माना जाता है। यह माना जाता है कि ईश्वर की सृष्टि को नष्ट करने वाला शैतान ही है। अधर्म और अविश्वास की उत्पत्ति शैतान ही करता है। धार्मिकों की बुद्धि भ्रमित करने का दोष शैतान को ही दिया जाता है। ईसाई धर्म में पारसी धर्म की तरह यह मत भी प्रचलित है कि एक दिन शैतान का विनाश अवश्य संभावी है। इस्लाम धर्म भी शैतान की सत्ता को स्वीकार करता है, यही समस्त बुराइयों का कारण है। हिंदू धर्म में द्वैतवाद अस्पष्टतः देखने को मिलता है। पौराणिक आधारों से द्वैतवाद की स्थापना की जा सकती है। सुर असुर, देव दानव, कृष्ण कंस, राम रावण इत्यादि का द्वैत देखा जा सकता है। चिंतन परंपरा की गंभीरता के फलस्वरूप द्वैत अन्य रूपों में देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ सांख्य का पुरुष प्रकृति, अद्वैत का सगुण निर्गुण, ब्रह्म माया आदि द्वैतवाद के ही रूप हैं। पृष्ठ संख्या 123, शीर्षक है विश्व में व्याप्त विभिन्न द्वैत और उनका स्वरूप। विश्व में व्याप्त द्वैत विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसको शुभ तथा अशुभ व्यवस्था एवं अव्यवस्था, शरीर तथा आत्मा और आशा तथा निराशा के रूप में देख सकते हैं। इनका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि धार्मिकता की दृष्टि से इनका अत्यधिक महत्व ज्ञात होता है। अगला शीर्षक है शुभ एवं अशुभ। द्वैतवाद यह मानता है कि शुभ तथा अशुभ की दो सत्ताएं हैं और इनमें सतत संघर्ष चलता रहता है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व संघर्षरत है। संघर्षमय विश्व को देखकर विचारक उद्विग्न होते हैं कि शुभ और अशुभ में किसकी विजय होगी। कुछ लोग तो अशुभ की ही विजय होगी ऐसा मानते हैं। रसेल तथा टी एच हक्सले ने तो अशुभ तत्व को ही बलिष्ठ माना है और अंत में उसकी ही विजय स्वीकार की है। ऐसी स्थिति में मानव कल्याण इसी में संभव है कि मनुष्य ध्वंसकारी प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके और असंतोष तथा निराशा से बचे। अगला शीर्षक है व्यवस्था तथा अव्यवस्था। द्वैतवाद का दूसरा रूप व्यवस्था एवं अव्यवस्था है। हम विश्व में एक ओर व्यवस्था देखते हैं तो दूसरी ओर अव्यवस्था। अव्यवस्था का अंत होना ही मानव कल्याण है। धर्म के आधार पर मनुष्य अपने को ही नहीं व्यवस्थित कर सकता, वरन प्रकृति की अव्यवस्था को भी समाप्त करने का प्रयास कर सकता है। इसी से मानव कल्याण संभव होगा। कुछ विद्वान जैसे स्पेंसर अव्यवस्था से व्यवस्था की कल्पना करते हैं। प्रारंभ में विश्व अव्यवस्थित ही था, परंतु बाद में चलकर व्यवस्थित बना। अतः व्यवस्था के लिए अव्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया में यह मत समीचीन लगता है, परंतु मानव संतोष के लिए यह बहुत उपयोगी नहीं प्रतीत होता। अगला शीर्षक है शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा के द्वैत की समस्या का समाधान दार्शनिकों ने कई तरह से किया है, परंतु इस द्वैत का समाधान नहीं हो सका है। धर्म की दृष्टि से शरीर और आत्मा का द्वैत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कहा जाता है कि मूर्ति पूजा शरीर और आत्मा के द्वैत का ही फल है। पूजा और आराधना के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। सगुण या व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की कल्पना इसी द्वैत पर आधारित कही जा सकती है। धर्म में आत्मा की अमरता को विशेष महत्व दिया जाता है। आत्मा के अमरत्व की कल्पना शरीर के मानने पर ही संभव हुआ जान पड़ता है, क्योंकि विनाश केवल मनुष्य के शरीर का ही होता है, आत्मा तो अमर रहती है। इस भावना से जीवन का सातत्य बना रहता है और अपूर्ण जीवन पूर्णता की प्राप्ति में संलग्न रह सकता है। आशा का संचार इसी धारणा पर निर्भर है। यद्यपि इस वैज्ञानिक युग में शरीर और आत्मा के द्वैत को सुलझाने का प्रयास वैज्ञानिकों ने अवश्य किया है, परंतु यह निर्मम सत्य है कि वे इस द्वैत को नहीं सुलझा सकें। अगला शीर्षक है आशा और निराशा। मनुष्य आशा और निराशा के बीच जीवित रहता है। कुछ लोग आशावादी होते हैं और कुछ निराश रहते हैं। निराश व्यक्ति संसार को दुखमय समझता है और आशावान व्यक्ति संसार को सुखमय समझता है। एक दूसरी दृष्टि से यह भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति निराशावादी होता है वह आंतरिक रूप में आशावादी भी होता है। ऊपर से ऐसा व्यक्ति संसार के सौख्य एवं ऐश्वर्य में लिप्त नहीं होता, वह मूल्यों की प्राप्ति के लिए उद्विग्न रहता है। वह नैतिकता तथा अनैतिकता, दुख सुख, शुभ अशुभ, पाप पुण्य के द्वंद में रहता है, परंतु उसे आशा रहती है कि किसी तरह उच्च मानवीय मूल्यों को प्राप्त करना है। आंतरिक रूप में जीवन की पूर्णता के प्रति आस्थावान और आशावान रहता है। इतना अवश्य है कि बाह्य रूप से वह संसार के आकर्षण से निराश रहता है। पृष्ठ संख्या 124। इसके विपरीत बाह्य रूप में आशावादी प्रतीत होने वाला व्यक्ति आंतरिक रूप से सांसारिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए बेचैन रहता है और निराशा का अनुभव करता है। चूंकि जिस सांसारिक सुख के लिए वह आशावान रहता है वह क्षणिक और अस्थायी होने के कारण उसे धोखे में डाल देता है, इसलिए उसे आंतरिक रूप में निराश ही होना पड़ता है। वह बहिर्मुखी होने के कारण अपनी आंतरिकता का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता, इसलिए बाह्य रूप से आशावादी दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार संपूर्ण जगत द्वैत के संघर्ष में चलता जा रहा है। विज्ञान जो विकासवादी दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता है और यह मानता है कि जगत का विकास निम्न से उच्च की ओर होता है, इस द्वैत के संघर्ष का समाधान नहीं कर सका। सदैव से ही यह द्वैत का संघर्ष वर्तमान है। उच्च सत्ता के साथ निम्न सत्ता का यह संघर्ष समाप्त नहीं हो पा रहा है। अगला शीर्षक है द्वैतवाद का महत्व। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है द्वैतवाद एक चेतावनी है। द्वैतवाद मानव को यह ज्ञान प्रदान करता है कि संसार सुख दुख का मिश्रण है। संसार में कठिनाइयां और कष्ट अवश्य रहेंगे, जो केवल शुभ या सुख ही पाते हैं और वे शुद्ध कल्पना के राज्य में है। संसार का चित्र ऐसा नहीं है। द्वैतवाद विश्व का यथार्थ रूप हमारे समक्ष रखता है और हमें विश्व का वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। बिंदु दूसरा है भाग्यवादी और अकर्मण्य होने से बचाता है। द्वैतवाद में शुभ के साथ अशुभ लगा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर सीमित और अपूर्ण है। ईश्वर की अपूर्णता का ज्ञान होने पर मील और जेम्स के अनुसार हम जीवन के संघर्षों के प्रति गंभीर बनकर विचार करते हैं और उत्तरदायित्व का भार लेने को तैयार रहते हैं। यदि हम यही मान ले कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और अशुभ झूठा है, तो जीवन की वास्तविकता से दूर रहने की कोशिश करेंगे। भाग्य की प्रवंचना में पढ़कर यही कहते रहेंगे कि ईश्वर की लीला विचित्र है, अशुभ शुभ ही का रूप है। हम संपूर्ण भार ईश्वर पर डाल दें, ईश्वर सभी समस्याओं को ठीक कर देगा। अतः पूर्ण और सर्वशक्तिमान ईश्वर को मान लेने से तो हम घोर भाग्यवादी और अकर्मण्य बन जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम मान ले कि विश्व में शैतान दानव एवं अहरिमन भी है और उसकी शक्ति से ही हम पीड़ित हैं, ईश्वर की यही विरोधी शक्तियां नष्ट करना चाहती है, तो अशुभ को दूर करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। अपना जीवन सुधार और कर्मठता में व्यतीत करेंगे। बिंदु तीसरा है देववाद और ईश्वरवाद की कमी को दूर करना। द्वैतवाद की सबसे बड़ी देन ईश्वरवाद की समस्याओं और कमियों को दूर करने में है। यही नहीं, नैतिक जीवन को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने, सुधारवाद और लोक कल्याण की भावना जागृत करने में इसकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। द्वैतवाद ने शुभ अशुभ की समस्या उत्पन्न करके धर्म दर्शन के क्षेत्र में विचार विश्लेषण के लिए एक नई दिशा दी है। धर्म के क्षेत्र में द्वैतवाद एक चेतावनी है। पृष्ठ संख्या 125। अगला शीर्षक है द्वैतवाद की आलोचना। इसमें पहला बिंदु है ईश्वर की अपूर्णता। द्वैतवाद ईश्वर के साथ एक विरोधी शक्ति की कल्पना करता है, जो ईश्वर की शक्ति में बाधक होती है। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वह कैसे किसी शक्ति से बाधित होता है? यदि वह किसी शक्ति से बाधित होता ही है, तो फिर वह पूर्ण कहां तक रहा? बिंदु दूसरा है धर्म की दृष्टि से असंतोष पूर्ण। यदि द्वैतवादी धर्म का ईश्वर अपूर्ण ही है, तो भक्तों की आकांक्षा की पूर्ति ऐसा ईश्वर कर ही नहीं सकता। भक्त द्वैतवाद में प्राप्त दो विरोधी शक्तियों में से किसकी आराधना करे यह समझ नहीं पाता। ईश्वर यदि सक्षम नहीं है तो धार्मिक भावनाओं की तुष्टि कौन कर सकता है? यदि मनुष्य अशुभ की पूजा करता है तो मानव जीवन में धर्म का क्या स्थान होगा? यह प्रश्न चिंताजनक एवं विध्वंसकारी प्रतीत होता है। अतः धर्म की दृष्टि से यह असंतोषपूर्ण है। बिंदु तीसरा है, द्वैतवाद से निराशावाद और किंकर्तव्य मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न होती है। एक धार्मिक व्यक्ति को द्वैतवाद से निराशा इसलिए होती है कि ईश्वर संकटग्रस्त जीवन से छुड़ा नहीं सकता। शैतान और अशुभ संकटों और विपत्तियों के जन्मदाता है, फिर जीवन की रक्षा कौन करे? ऐसी स्थिति में मनुष्य निराश और किंकर्तव्य विमूढ़ भी हो जाता है। फिर मनुष्य कहाँ जाए और किसका शरण ले, उसकी समझ में नहीं आता। इस प्रकार द्वैतवाद में शंका, निराशा, अनिश्चय और भाग्य का भरोसा ही हाथ लगता है। इसके ठीक विपरीत यदि हम मानव मन में अंतर्निहित उपासना और इष्ट के प्रति निष्ठा की भावना की ओर देखें तो एकेश्वरवाद की झलक मिलती है। द्वैतवाद में भक्ति को चूंकि कोई स्थान नहीं मिलता, संभवतः इसीलिए यह मत असफल रहा। धर्म के इतिहास में इसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। इसके स्थान पर एकेश्वरवादी मत पूर्ण रूप से बौद्धिक न होते हुए भी उपासना और भक्त की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। अगला शीर्षक है तीसरा, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर या मूल तत्व एक है। विश्व में जो कुछ दिखाई देता है वह उस एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अनेकता एकता का प्रकाश है। जगत के मूल स्वरूप में द्वैत और अनेकता का कोई स्थान नहीं है। एक ईश्वर के बिना जगत की व्यवस्था और एक रूपता की व्याख्या संभव नहीं है। अनेकेश्वरवाद के अनुसार विश्व की व्यवस्था का प्रश्न हल नहीं हो सकता। अनेकेश्वरवादी इस व्यवस्था के लिए अंधविश्वास और कल्पना की शरण लेते हैं। यही प्रश्न द्वैतवाद में भी है। द्वैतवाद जड़ और चेतन, शुभ और अशुभ के द्वारा जगत की व्यवस्था को समझाने का प्रयास करता है, परंतु दो तत्व जड़ और चेतन एक दूसरे के विरोधी होने के कारण जगत के विकास और व्यवस्था को सुलझाने में असफल सिद्ध होते हैं। यदि जड़ और चेतन, शुभ और अशुभ तत्व को एक परम तत्व का दो रूप माना जाए तो जगत की अनेकता और व्यवस्था के प्रश्न को हल किया जा सकता है। धर्म की दृष्टि से भी मानव अनेक और द्वैत के प्रपंच में पढ़कर अपनी धार्मिक आकांक्षा की संपूर्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए अनेकेश्वरवाद तथा द्वैतवाद को छोड़कर एकेश्वरवाद की ओर जाना पड़ता है। धर्म के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता लगता है कि एकेश्वरवाद की धारणा सुविकसित मानव बुद्धि का परिणाम है। पृष्ठ संख्या 126। धर्म का यह एक परिपक्व रूप है। आदिम धर्म में जीववाद, राष्ट्रीय धर्म में अनेकेश्वरवाद और पौराणिकता के आधार पर द्वैतवाद का समर्थन मिलता है, परंतु विश्वव्यापी धर्म के पूर्ण विकास की आस्था में एक ही ईश्वर की धारणा मिलती है। बुद्ध विकास के परिणाम स्वरूप एकेश्वरवादी मत दर्शन के अधिक निकट हो गया है। यही दर्शन व्यवहार में धर्म बन गया है। फिर भी इसकी व्याख्या धर्म और दर्शन दोनों पर आधारित है, इसीलिए तो यह धर्म दर्शन का विषय बन गया है। पाश्चात्य दर्शन में स्पिनोजा ने एकेश्वरवाद का बड़ा ही सबल समर्थन किया है, इसीलिए उनको ईश्वरोन्मुक्त दार्शनिक कहा जाता है। यद्यपि डेकार्त ने भी ईश्वर को माना है, परंतु उन्होंने जड़ और चेतन दो तत्वों को स्वीकार किया है। परम तत्व के रूप में ईश्वर को मानकर निरपेक्ष तत्व बताया और जड़ तथा चेतन को सापेक्ष। स्पिनोजा ने इसका खंडन करते हुए बताया कि तत्व स्वतंत्र होने के कारण सापेक्ष नहीं निरपेक्ष है। स्पिनोजा ने डेकार्त के जड़ और चेतन के द्वैत को मिटाकर अद्वैत का प्रतिपादन किया, जिसमें जड़ और चेतन दोनों को एक ही तत्व अर्थात ईश्वर के गुण माना है। ईश्वर के अनेक गुण हैं, जिनमें जड़ और चेतन भी दो गुण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्पिनोजा का ईश्वर सगुण है। यदि ईश्वर सगुण होगा तो वह गुणों से सीमित हो जाएगा। गुण तो वे धर्म हैं जिन्हें बुद्धि तत्व का स्वरूप समझती है। उनका कहना है कि गुण वास्तव में तत्व में नहीं होते, वे तो केवल प्रतीत मात्र हैं। तत्व केवल एक है, गुण अनेक हैं। इन गुणों की अभिव्यक्ति अनेक प्रकारों में होती है। अतः एक तत्व ही सत्य है, अनेक तो भ्रम है। इस दृष्टि से स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर निर्गुण है, इसीलिए इनके एक तत्ववाद को अमूर्त एक तत्ववाद कहा जाता है। इनके दर्शन में ईश्वर और प्रकृति एक है, इसलिए स्पिनोजा का एक तत्ववाद सर्वेश्वरवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सब कुछ ईश्वर और ईश्वर सब कुछ है। आधुनिक दर्शन में एक तत्ववाद को मूर्त एक तत्ववाद का रूप दिया गया है। इसके समर्थकों में हेगेल, ग्रीन, फिक्टे तथा ब्रैडले इत्यादि हैं। इन दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर या तत्व एक ही हैं। अनेकता उसी की अभिव्यक्ति है। अनेकता का एकता से अनिवार्य संबंध है। अनेकता केवल भ्रम नहीं, वह एकता के समान ही सत्य है। भारतीय दर्शन में एकेश्वरवादी मत कई रूपों में मिलता है। उपनिषदों में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। शंकर का अद्वैतवाद और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद एकेश्वरवादी मत के उदाहरण हैं। रामानुज का सिद्धांत स्पिनोजा के मत से ही मिलता जुलता है। धर्म की उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाता है कि अनेक जीववाद तथा अनेक देववाद के पश्चात एकेश्वरवाद का रूप सामने आता है, जिसे मैक्स मूलर ने हेनोथिज्म नाम दिया है। इसमें एक ही देवता को प्रधानता दी जाती है। इसी धारणा के पश्चात एक ही ईश्वर की कल्पना होती है, जिसके अधीन या अंग के रूप में अन्य देवता होते हैं। भारतीय धर्म की वैदिक परंपरा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ यह उक्ति मिलती है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। आगे चलकर भारतीय धर्म में यही एकेश्वरवाद की धारणा अद्वैतवादी मत में विकसित होती है। पाश्चात्य धर्म दर्शन की दृष्टि से एकेश्वरवाद सर्वप्रथम यहूदियों में पाया जाता है। यहूदी लोगों का ईश्वर, जिसे वे याहवे कहते थे, न्यायाधीश के प्रतीक थे। इसी यहूदी एकेश्वरवाद से ईसाई धर्म निकलता है। इसमें एक ईश्वर की पिता के रूप में कल्पना की गई है। सभी मानव उसी एक पिता की संतान हैं। इसका ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। पृष्ठ संख्या 127। इस्लाम धर्म भी एकेश्वरवादी है। इसमें यहूदियों के न्यायाधीश ईश्वर और ईसाइयों के प्रेममय ईश्वर दोनों को मिलाया गया है। यह एकेश्वरवादी धारणा लगभग विश्व के समस्त जीवित धर्मों में पाई जाती है। धर्म में इस एकेश्वरवादी मत के अनुसार ईश्वर एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है, जो अपने भक्तों के प्रति उत्तरदायी है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, मूल्यों का संरक्षक, आराध्य और विश्व का आदि से अंत तक संचालन करता है। इस एकेश्वरवाद के भिन्न भिन्न रूप हैं, जिसमें कुछ विषयों को लेकर विभिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। जैसे कुछ एकेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानते हैं, तो कुछ व्यक्तित्व रहित, कुछ सगुण मानते हैं तो कुछ निर्गुण, कुछ ईश्वर को जगत में व्याप्त मानते हैं और कुछ जगत से परे। फिर भी सभी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। इस प्रकार एकेश्वरवाद से संबंधित चार सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला देववाद अथवा केवल निमित्तेश्वरवाद, दूसरा सर्वेश्वरवाद, तीसरा पुरुषोत्तमवाद या निमित्तोपादनेश्वरवाद, चौथा ईश्वरवाद। इन एकेश्वरवादी सिद्धांतों की व्याख्या हम अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ एकेश्वरवाद की सामान्य समीक्षा आवश्यक प्रतीत होती है। अगला शीर्षक है एकेश्वरवाद की समीक्षा। एकेश्वरवाद चाहे दार्शनिक दृष्टि से बहुत तर्क संगत न हो, परंतु धर्म के क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। धार्मिक व्यक्ति एक ईश्वर की अभिप्सा करता है। बिना ईश्वर के धर्म और धार्मिक क्रिया संभव नहीं जान पड़ती। इस दृष्टि से एक ईश्वर की धारणा समीचीन प्रतीत होती है। भक्त उस ईश्वर के समक्ष आत्मनिवेदन, समर्पण और अपनी मनोवांछा अव्यक्त कर सकता है। अनकेश्वरवाद और द्वैतवाद की कमी को एकेश्वरवाद पूर्ण करता है। यह धार्मिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को सैद्धांतिक रूप में रखने का सफल प्रयास करता है। कम से कम एकेश्वरवाद के अनुसार मानव ईश्वर के संबंध में कुछ समझ सकता है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से एकेश्वरवाद धर्म दर्शन के क्षेत्र में संतोष प्रदान कर सकता है तो इसकी यही सबसे बड़ी उपयोगिता है। यदि एकेश्वरवाद का ईश्वर ही सृष्टि का मूल कारण है तथा वह व्यक्तित्व पूर्ण है तो अवश्य ही उसमें उद्देश्य पूर्णता होगी और वह भक्तों की आर्तता पर अवश्य ध्यान देगा। सृष्टि के पीछे ईश्वर का प्रयोजन होगा, इसलिए मानव जीवन भी निष्प्रयोजन नहीं होगा। मानव सृष्टि में अपनी पूर्णता की खोज अवश्य ही करेगा। लक्ष्य की पूर्णता में ही मानव नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है। अतः एकेश्वरवाद नैतिक और धार्मिक जीवन का प्रबल समर्थक है। यदि एकेश्वरवाद के एक सिद्धांत के अनुसार ईश्वर केवल विश्व रचयिता है और विश्व रचना करके विश्व से परे हो जाता है तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार ईश्वर जगत से परे तथा जगत की वस्तुओं में अंतर्भूत रहता है। इस दृष्टि से ईश्वर जगत से परे तथा जगत में व्याप्त भी रहता है। यह पूजा का विषय भी बनता है। धार्मिकता की दृष्टि से यह संतोषजनक होगा। अगला शीर्षक है समस्याएं। यद्यपि एकेश्वरवाद का प्रभाव धार्मिक जीवन के लिए कल्याणकारी है और इसमें अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता का स्थान नहीं है, जैसा कि अनकेश्वरवाद में ये सभी कमियां विद्यमान हैं, फिर भी इसमें अनेक कठिनाइयां और समस्याएं वर्तमान हैं। पृष्ठ संख्या 128। पहली कमी है, यदि ईश्वर है और वह सृजन करता तथा पालन करता है, जगत में व्याप्त है, तो इंद्रिय ग्राह्य होना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल कल्पित माना जा सकता है। दूसरा है, कहा जाता है कि ईश्वर व्यक्तित्व संपन्न है, सर्वज्ञ, प्रेममय, दयालु तथा सर्वशक्तिमान है आदि। ईश्वर के इन गुणों को स्पष्ट करना कठिन है। तीसरा है, यदि ईश्वर पूर्ण है और चाहता है कि कोई पापाचरण न करे तो प्रश्न होता है कि पूर्ण ईश्वर ने ऐसे जगत की रचना क्यों की जिससे विश्व में अशुभ और बुराइयां आ गई। चौथा है, ईश्वर की व्यापकता और विश्वातीतता तथा सृष्टि रचना संबंधी समस्याएं भी एकेश्वरवाद में देखने को मिलती हैं। पांचवा है, मानव अमरता की आशा करता है, क्या एकेश्वरवाद के अनुसार अमरत्व की धारणा को सरलता पूर्वक तर्क संगत बताया जा सकता है? इनमें अनेक कठिनाइयां हैं जिनका हल होना सरल नहीं है। अध्याय 6 समाप्त।